نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ مدد مانگتے ہوئے ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے. آج کا ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 256 تک ہے. بہت ہی اہم سبق ہے اور پارے کا پہلا سبق بہت ہی اہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. تھوڑا سا ابھی تک جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے بات کروں گی. قرآن پاک کی ایک ایک آیت دوسری آیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم نے دوسرے پارے کی آخری آیت میں بات دیکھی تھی کہ انک لمن المرسلین. اگر آپ کے پاس دوسرا پارا آج نہیں بھی ہے تو یقیناً آپ نے لفظی ترجمہ یاد کیا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پارے کے بالکل آخر میں کہا گیا کہ بے شک آپ ہی مرسلین میں سے ہیں. چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ واقعات کہ جو کبھی کسی نے سنے نہ سوچے نہ دیکھے نہ بھالے, اس کی بات جب ہوئی تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے ان باتوں کا سننا یقیناً آپ کی نبوت کی دلیل تھی. وہاں انک لمن المرسلین تھا تو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تلک الرسل. یہ وہ رسول ہے. کیا پتا چلا کہ آپ رسولوں کی لڑی میں سے ہی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اس پورے پارے میں آپ کو نبوت کی باتیں بہت ملیں گی. بہت کم لوگوں نے اس پہ غور کیا لیکن ہر پارے کا جو شروع کا حصہ ہے وہ پورے پارے کے اندر اس کا تھیم بن جاتا ہے. تو آج کے سبق کو بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے پارے میں نبیوں کی نبوت یعنی رسالت اس کا ٹاپک ہے, اور رسالت کے ناطے سے ذمہ داریاں کیا ہیں, اور رسولوں کی زندگی میں جو بڑے مشکل مراحل آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے گزارتا ہے. بہت ہی خوبصورت پارا ہے. اسی میں آپ کو سورہ بقرہ کا اختتام ملے گا, آخری آیتیں جو عرش کا خزانہ ہے, اور اسی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توحید اور محبت میں ڈوبی ہوئی آیات ملیں گی سورۃ آل عمران کے شروع میں کہ اللہم مالک الملک, اور سب سے بڑھ کے آج ہی کے سبق میں جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دل ہیں اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے الفاظ اور اس کلام کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اور وہی انداز ہوگا کہ پہلے آیتوں کو ہلکا سا لے کر پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. آیت ہے 253, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. کیسے فضیلت دی؟ منہم من کلم اللہ. بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا, پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کیا, اور وحی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے ہی کلام کیا. ورفع بعضهم درجات, اور بعض کے درجے بلند کر دیے. یعنی ہر دور میں ہر نبی اپنے دور کا بہترین نبی ہوتا تھا, لیکن کچھ کے درجے خاص طور پہ بلند ہوئے. مثلاً کچھ لوگ ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. سارے نبیوں میں سے سب سے اوپر درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر اس کے بعد اولو العزم جو پانچ ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آتے ہیں. پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ شان ہے کہ ان کو خلیل اللہ کہا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان کا انداز کیا ہے کہ ان کو باپ کے بن پیدا کیا گیا. تو وہ رفع بعضهم درجات, ایک کے اوپر دوسروں کے درجوں کو بلند کر دیا گیا. مراد کیا ہے کہ کسی کو ایک اینگل سے بڑھا دیا, کسی کو دوسرے اینگل سے بڑھا دیا. اور یاد رکھیے کہ آپ دنیا کی مختلف چیزوں میں دیکھیں تو اس کے درجوں کا فرق ہوتا ہے. بعض وقت کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے, ایک 10 ہے تو دوسرا 15 ہے. بعض وقت کوالٹی اچھی ہوتی ہے, بعض دفعہ کسی چیز کی ڈیوریشن یعنی اس کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری چیزوں سے. اسی طرح بعض کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے, بعض کے کا دماغ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف چیزیں دیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزات دے دیے. یہاں ان کے الگ سے بات کر دی. اگر دیکھا جائے تو کلم اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا, تو یہاں عیسیٰ کا نام لے کر کہہ دیا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے معجزات دے دیے. بینات, بینات ان کی جمع ہے, اور عیسیٰ ابن مریم ان کو ماں کی طرف نسبت دی گئی کیونکہ یہ بن باپ کے پیدا کیے گئے. اشارہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان معجزات کی طرف ہے جس کا ذکر آگے سورت آل عمران کے شروع میں ہی آنے والا ہے. وَعَيَّدْ نَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے, پیچھے بھی بات ہوئی تھی. قدس اللہ کی ذات ہے. بروح القدس مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف نسبت دی جیسے بیت اللہ یا جس طرح سے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی مقام جن کو دیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اب یہاں تک بات کر دی, اتنی بات کو اگر ہم دیکھیں نا تو تل کا رسول سے ایسے لگتا ہے یہ تل کا جو ہے نا اصل میں ذالکہ کا مؤنث ہے. سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فی, کتاب مذکر تھی نا تو ذالک آ گیا, یہاں رسول کے لفظ کے ساتھ تل کا آ گیا, یعنی تل کا رسول. رسول کیا ہے؟ رسول کی جمع. اب میں آپ بچپن سے لفظ رسول دیکھتے ہیں, ہمارے گاؤں کے بڑے بوڑھے یا جوان شہروں کے ہر بندہ کہتا ہے اللہ رسول, لفظ رسول بہت دفعہ سنتے ہیں نا. آئیے تھوڑا سا آج اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. عام معروف معنی ہم سب جانتے ہیں, رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام لاتا ہے, لیکن ڈکشنری میں رسول کا لفظ رسلن سے ہے, را سین لام. اس کے معنی ہوتے ہیں, بڑے غور سے سنیے گا, یہاں سے آپ کو رسولوں کی زندگی کا مشن بھی سمجھ آئے گا. کسی چیز کے سامنے جو رکاوٹ ہو اس کا دور ہو جانا, کسی چیز کے سامنے جو رکاوٹ ہو اس کا دور ہو جانا, اور اس طرح اس کا اطمینان اور نرمی اور سکون کے ساتھ چل پڑنا. حقیقت کیا ہے کہ اپنے وقت میں معاشرے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں رسولوں کے آگے کھڑی کی جاتی ہیں. یہ سنت تھی, ہے اور رہے گی. کل بھی جس نے اللہ کا پیغام پیش کیا لوگوں نے اس کے راستے میں پتھر اٹکائے. آج پتھر تو کوئی نہیں ہوتے, کچھ کم بھی ہو تھوڑی سی بھی چیز ہو تو محسوس زیادہ ہوتی ہے. تو رسول کو رسول کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے راستے کی ہر چھوٹی بڑی رکاوٹ کو دور کر دیا. اچھا, شروع میں رکاوٹیں آتی ہیں. اب آپ اس لفظ کو انجوائے کریں, سوچیں ذرا, رسول ہی کیوں آ گیا, کچھ اور لفظ کیوں نہیں آ گیا, پیغمبر کیوں نہیں آ گیا, وہ بھی عربی کا لفظ ہے, پیغمبر نبی بھی ہوتا ہے, لیکن رسول اور نبی کا فرق آگے آئے گا. لیکن رسول جو ہے نا نبی سے اوپر کا درجہ ہے, اور رسول کے لفظ میں اس کا مشن چھپا ہوا ہے کہ جب اس نے دین کی بات کی مخالفتیں آئیں, رکاوٹیں تھیں, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ہوئیں اور پھر اطمینان اور نرمی کے ساتھ چل پڑے. حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے ذہن میں کہ موت کے وقت دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ اے میرے رب آپ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ لے جائے, یعنی اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ دے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی کہ اللہم بر رفیق الاعلیٰ. یعنی رسولوں کی زندگی کا شروع کا دور مشکل ہوتا ہے یا اس دنیا میں ان کا گزارا ہوا وقت مشکل ہوتا ہے, بٹ موت کے آثار کے ساتھ ہی یا ایتہا النفس المطمئنہ. سچ بتائیں فائدے میں رہے کہ نقصان میں؟ آج مخالفتیں ہیں, چلی گئی نا. آپ سب سے لمبی عمر جس کی بھی جانتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. آپ اپنے نوٹس میں لکھ کر دیکھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اسلام کے لیے, مان لیتے ہیں ہم, مان لیتے ہیں کہ 950 سال پورے پیدا ہوتے ہی مان لیں اور مرتے دم تک مخالفت ہوئی, لوگوں نے ان کو برا کہا, ڈانٹا. سورت نوح دیکھ لیجئے, سورہ قمر دیکھیے, اللہ نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا. لیکن اب حضرت نوح کو قبر میں گئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 950 سال تو ایک صدی بھی نہیں ہوتی, اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے قرن کے قرن گزر چکے, تکلیفیں گئیں, اجر موجود ہے. یہ میسج نوٹ کریں. آج میرے آپ کے لیے بھی رسول راہبر اور رہنما کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی دین کے رستے پہ جب چلنا چاہتے ہیں تو آج کا سارا سبق یہی ہے کہ ہمیں روکتا کون ہے, ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. آپ بھی تھوڑا سا صبر کریں گے, آیت الکرسی کے بعد اس کا جواب انشاءاللہ آپ خود قرآن سے لے لیں گے. لیکن یہاں چلتے ہیں لفظ رسول پہ. عرب لوگ ناقت الرسل تو کہتے تھے نرم رفتار اونٹنی کو, آہستہ آہستہ چلتی تھی. یہاں بھی ایک طریقہ ہے, رسولوں نے دھاڑ سانی نہیں کی. 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے صبر کا, سوسائٹی کو دیکھنے کا. یعنی انہوں نے اوور نائٹ تبلیغ نہیں کی اور اوور نائٹ چینج بھی نہیں چاہیے. اسی طرح ابل المراسیل کہتے ہیں نرم رفتار اونٹوں کو. تو پھر رسول کون ہوا؟ چل پڑنے والا. لکھیں ذرا, بڑا پیارا مجھے لگا یہ لفظ, رسول کون؟ چل پڑنے والا, اپنے حال میں مگن. اس کو نہیں پرواہ کہ دوسرے میرا ساتھ دیں تو میں چلوں, روانہ ہونے والا. جیسے کسی کو ہم سی آف کرتے ہیں نا, رسول چل پڑتے ہیں. کبھی کبھی اس کی زندگی میں نرمی اور سکون آتا ہے تو وہ رسل بن جاتا ہے, یعنی اپنے حال پہ سکون اور اطمینان سے چل رہا ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے اس کو مشکل آتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک گہرا سکون ہوتا ہے, اس کے اندر ایک بہت سکون ہوتا ہے, اور پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے. یعنی اصل میں لفظ رسول میں لکھے چلتا ہی رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے. اونٹوں کا گلہ, اس کو بھی الرسل کہتے ہیں عربی زبان میں. تسلسل کا معنی ہے. لکھے اس میں ایک اور اینگل, تسلسل. رسولوں کے کاموں میں تسلسل ہوتا ہے, کسی بھی کام میں. کھانا پکانے کے دوران اگر دو بار کھانا چولہا بند کر دیں تو تسلسل نہیں رہے گا. پکتی روٹی کے نیچے چولہا بند کر دیں گے تو تسلسل ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, اسی طرح سے اللہ کا یہ پیغام, یہ وحی ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے, پکاتی ہے. گوشت گلتا ہے نا, دل کا گوشت گلتا ہے. اب ایک دن خوب گلا تو پھر تسلسل ٹوٹ گیا تو اگلے دن سخت ہوگا نا, اور گرم ٹھنڈے ہونے کا نام تو آپ خود پڑھ چکے ہیں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رسول کا جو لفظ ہے نا, یہ رسول کی جمع ہے. اسی سے لفظ رسالت بھی ہے, پیغام دینے والا. رسول وہ جس کو پیغام دے کر بھیجا گیا اور وہ چل پڑا. تو ساری بات کو میں سم اپ کر کے آگے چلتی ہوں, میں پڑھ کے سنا رہی ہوں. ایک ڈکشنری کے الفاظ ہیں, رسول وہ ہوتا ہے جو شخص اپنے بھیجنے والے کی طرف سے. یہ بڑا اہم ہے, خود سے کوئی رسول نہیں بن سکتا, یہ بہت اہم ہے. یہ نقطہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ فارگوٹن ہے, کہ رسول بھیجا جاتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خود نہیں نبی بنتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں کے اعتراضات, اس میں یہ بھی تھے کہ تو خود ہی رسول بن گیا. تو رسول تو ہے ہی. جیسے دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آپ میں سے سارے باری باری اٹھ کے ریسپشن پہ چلے جائیں گے آپ. بٹ اگر میں یہاں سے کہوں کہ محبیبہ آپ جائیے مجھے باہر سے ایک بک لا کر دیں, تو یہ پھر میں نے ان کو بھیجا. تو لفظ رسول میں خود آنا نہیں ہوتا, وہ شخص جو اپنے بھیجنے والے کی طرف سے مسلسل بتدریج, سیکنڈ کوالٹی لکھیے بتدریج, یعنی گریجولی. پھر تیسری, نہایت نرم روی سے پیغام دے. کڑوے نہیں ہوتے, کھردرے نہیں ہوتے تھے رسول. نیز خود اس کا پیغام بھی الرسول ہے. یہ جملہ سمجھ آیا آخری؟ خود بھی رسول ہوتا ہے اور جو پیغام اس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے وہ بھی رسول ہے, اور بھیجنے والا صرف اللہ ہوتا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, کیونکہ اللہ ہی کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ وحی کسی کے ذریعے سے بھیجے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہا گیا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تو اللہ اپنی ہدایت دلانے کا بندوں کو جو وعدہ پورا کرتا ہے فرشتوں کے بعد, رسولوں کے ذریعے سے کرتا ہے. چلیے, تل کا رسول سارے ہیں. کتنے ہیں رسول؟ تقریباً 313 آتے ہیں. بعض روایات ہیں, آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں, مختلف چیزیں آپ پڑھیں گے. آگے جہاں بھی لفظ رسول آئے گا میں اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی. لفظ فضل کو دیکھیے گا, فضلنا. فضل کا لفظ پیچھے بھی بہت جگہ آیا, بطور احسان. کسی کو کوئی چیز اس کے حق سے زیادہ دینا. دیکھیے, امپلائی کو آپ نے پے دے دی جتنا آپ نے اس سے اوکے کیا ہوا تھا, یا کوئی بھی چیز آپ نے اوکے کی تھی, میں یہ دوں گی, آپ نے دے دیا, بل آیا آپ نے دے دیا, رینٹ تھا دے دیا, وہ فضل نہیں ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا. تو فضل کیا ہے؟ نقص کی ضد. نقص ہوتا ہے کم, بس آپ نے 1000 دینا تھا, آپ کٹ کٹا کے کسی کو 900 دے رہے ہیں. فضل کیا ہے؟ اس سے اوپر دینا, ضرورت سے زائد. اسی لیے پھر زیادہ تر اچھی باتوں کو فضل کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں ساؤنڈ بدلنے سے, جیسے فضل ہے اچھا, تو فضول باب فعول ہوتا ہے, ایک فضول بیکار ہو جاتا ہے, اپوزٹ معنی ہو جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ بری باتیں. فضیلت کہتے ہیں مرتبے کی بلندی اور برتری کو. بھلائی کی کثرت, زیادتی, تو یہ کس طرح سے فضل کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ دیتا ہے. میں ایک لمحے کے لیے روک کے آپ سے پوچھتی ہوں, کیا اللہ نے آپ کے اوپر بھی کوئی فضل کیا؟ میرے اوپر بھی کوئی فضل کیا؟ अल्लाह की कसम, मुझे तो ये सर से पांव तक अल्लाह का फजल ही दिखता। जो मिला हक नहीं था, जो आज खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जिन घरों में रहते हैं, सर बर्फ के ऊपर सजदों में चला जाए ना, तो भी हक ना अदा करे कि हम सब अल्लाह के फजल से जी रहे। रोता बच्चा दुनिया में आता है, भूखा आता है, और माँ के पेट में, माँ के जिस्म में अल्लाह उसके लिए खुराक भर देता है, ये अल्लाह का फजल है। और रसूलों पे फजल क्या था, एक्स्ट्रा चीज उनको क्या मिली, ये लिखिए, क्योंकि फजल में लफ्ज एक्स्ट्रा है ना, पीछे इस पे हम बात कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी। रसूलों को जो एक्स्ट्रा फजल मिला होता है ना दूसरे लोगों से, अल्लाह का बराह रास्त उनसे ताल्लुक, जिसको वही कह सकते हैं आप, कभी फरिश्ते के जरिए होता है, कभी ख्वाब के जरिए होता है, कभी किसी तरह होता है। पीछे हमने बनी इसराइल के लिए भी पढ़ा था, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तो फजल बहुत खूबसूरत चीज है। इसी तरह से मैदान जंग की जो फतूहात होती है ना, उसको भी फजल कहते हैं। मसाइब और नाखुशगवार हादसों के मुकाबले में भी जो इंसान बच जाता है ना, उसको भी फजल कहते हैं। और इसकी बहुत डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आगे चलते हैं। बाद अलाबाद हो गई बात, इसी से लस बाउजा पीछे हमने पढ़ा था, सम ऑफ किसी चीज का कुछ हिस्सा, पूरे में से थोड़ा, यानी 10 में से 8, 9 में से 4, इस तरह से मुराद है। बास को बास पर किया, असल में शायद का थीम क्या है, ये लफ्ज कलाम जो इसको पहले समझ लेते हैं। चलिए, कलाम के काफ लाम मीम से पत्थर मारने को कहते हैं कलेमा। जैसे दरिया या पानी है ना, तो उसमें पत्थर मारे तो लहरें उठती है ना, तो कलाम भी असल में ये हमारे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं अपने मुंह के आगे यूं हाथ रखू ना, तो मुझे अपने मुंह में से वेव्स निकलती हुई दिख रही है, गर्म हीट एनर्जी होती है। आप सब साइंस पढ़ चुके हैं, अब तो पता ही लग गया। तो कलाम में क्या होता है, हम कुछ मारते हैं, मेरे लफ्ज आपके कानों पर पड़ रहे हैं तभी आप सुन रहे हैं, तो ये लफ्ज कलाम के अंदर एक असल चीज है। लेकिन यहां लफ्ज कलाम क्या है, मुख्तसर बात, ये बड़ी अहम बात है, मुख्तसर बात, यकतरफा बात, डायलॉग नहीं है, यानी दोनों का बोलना नहीं कि कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोले, जिसको डिस्कशन स्टाइल कहते हैं, गुफ्तगू। जैसे शायर का कलाम है, अदीब का कलाम है, तो कलाम क्या होता है कि बस एक का बोलना, जैसे मैं बोल रही हूं इस वक्त, तो आप कह सकती हूं मैं कि मैं इस वक्त आपसे कलाम कर रही हूं, ठीक है। तो कलाम किया अल्लाह ताला ने, फिर इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, तो इसमें नंबर एक बात करना, नंबर दो बड़ा अहम है जो मुझे अपने लिए और आप सबको अपने लिए लिखना है, जख्मी करना। हमारे लफ्जों के तीर लोगों के दिल जख्मी कर देते हैं, कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, जुबान का घाव नहीं भरता, क्लियर है। तो बहुत सोच के बोलना चाहिए, बहुत समझ के बोलना चाहिए। लफ्ज कलाम में शिद्दत पाई जाती है, कुव्वत पाई जाती है। अल कलाम सख्त जमीन को भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहां कलाम की बात करके कितनी बड़ी बात की, साइड का इशू मिलता है कि अल्लाह की सिफत कलाम करना भी है, यानी अल्लाह कलाम करता है, कब करता है, सच बताएं, आयत पे नजरें गाड़े, क्या इस वक्त अल्लाह आपसे कलाम नहीं कर रहा, और आप अल्लाह से कब कलाम करते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं। किसी ने कहा कि जब तुम चाहो कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो तुम कुरान खोलो, और जब तुम्हारा दिल चाहे अल्लाह से कलाम करने को तो नमाज शुरू करो। 3 सेकंड सोचती हूँ मैं भी और आप भी, मेरा कुरान की पढ़ने के दौरान इतना फोकस होता है, और नमाज में कितनी कैफियत होती है कि मैं अपने रब की बात देख सकूं और सुन सकूं। तो कलाम करके अल्लाह ने इज्जत दी, यहां ये भी लिखिए कि इसकी जिक्र की जरूरत क्या थी, तो लिखिए इज्जत, शर्फ है। हर एक से तो नहीं कलाम करते, आप बोलते हैं हर एक से, हर एक आपसे बात कर सकता है, हर एक हर जगह हर वक्त आपको फोन कर सकता है, हर एक को आप अपना फोन नंबर दे देते हैं, अक्सर लोग नहीं देते। अल्लाह की जात कैसे सबके साथ कलाम करे, वो तो किसी से भी ना करे तो उसकी शान को यही लायक है, लेकिन नबियों के साथ वो कलाम करता है। क्यों करता है, इसलिए कि नबियों ने वो पैगाम आगे जाके देना होता है, राबता है। लिखे नबियों की खूबी, अल्लाह के चुने हुए लोग, लोगों को रब से मिलाने का जरिया, रसूल ब्राह रास्त रहनुमाई पाते हैं, फिर लोगों को गाइड करते हैं, और रसूलों की रहनुमाई में ना तो गलती का इम्कान है ना सीधे रास्ते भटकते हैं, देखिए उस्ताद बड़ी पूरी कोशिश करता है कि वो भटके ना, लेकिन हर उस्ताद जरूरी नहीं कि गलती से पाक हो। हर एक से गलतियां होती हैं, रसूल से गलती नहीं हो सकती, ये कहने का मतलब है। कुरान में तो गवाही दी अल्लाह ने नबी सल्लम की कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहय यूहा। फिर इसी तरह रसूलों की एक और सिफत है कि ये झूठ नहीं बोलते। अगली बात है हक को नहीं छुपाते। अगला रसूलों का मुकाम, इंसानों को मकसदे जिंदगी सिखाते हैं। फिर रसूलों की एक और शान कि आखिरत का सच्चा इल्म उन्होंने दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर हमने कुरान में ना पढ़ा होता, अहादीस से ना पता चलता कि मरने के बाद क्या होता है मैयत के साथ, तो वल्ला ही कभी सब्र ना आता, मुझे तो ना आता अपने प्यारों पे। किधर गए, जमीन में, मट्टी में? नहीं, हमें पता है वो मट्टी में नहीं है, उनका जसद इधर है, वो तो उनकी रूह तो चली गई। तो ये रसूलों का कितना बड़ा एहसान है। फिर इसी तरह इंसानों को इनके खालिक से मुतारिफ कराया रसूलों ने। फिर गैबी हकायक को इंसानों तक पहुंचाया, गैब बताया जिस हद तक अल्लाह ने चाहा। फिर रसूलों का अगला एहसान क्या है, कायनात की हैसियत क्या है, इस कायनात में इंसान की हैसियत क्या है, वो रसूलों ने बताई। फिर इसी तरह रसूलों का एक और मुकाम क्या है कि अपनी इसलाह के साथ जमीन की इसलाह का निजाम बनाया। और सबसे बड़ा एहसान बताऊं, अगर इस वक्त मैं सिर्फ आज पूरा वक्त सिर्फ लफ्ज रसूलों पे बात करूं ना तो कम है, लेकिन रसूलों ने अपना सुख चैन छोड़कर इंसानों के लिए जीना सिखाया, जाती जिंदगी से ऊपर उठ के सिखाया जीना। और हर रसूल ने अपने वक्त के सबसे बड़े गुनाह या जुर्म को लोगों के सामने पेश किया, इसीलिए मुखालफत भी हुई। अगर रसूल लोगों को खाने खिलाते और उनकी बातों पे वाह वाह सुभान अल्लाह कहते ना, तो ये पत्थर ना खाने पड़ते। रसूलों ने कभी दुनिया की दौलत की परवाह नहीं की कि हमें लोगों से फायदे चाहिए इसलिए उनकी मर्जी की बात करें, उनके लिए ये सब कुछ करें। और हकीकत है कि आपके मेरे लिए यही रोल मॉडल है। रिसालत का फरीजा कैसे अदा हुआ? रसूलों ने वही चार काम किए जिनका सूरत बकरा में आप दो दफा तस्करा पढ़ चुके हैं। क्या? अल्लाह की किताब की आयात की तिलावत सिखाई, तालीम दी, तज़किया किया और इंसानों को एक ऐसा गिरोह बना दिया कि जो दुनिया में अल्लाह का निजाम कायम कर सके। सवाल पैदा होता है, रसूलों का मिशन क्या होता था? क्या शोहरत चाहते थे, दौलत चाहते थे, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे? नहीं, रसूलों का मिशन तौहीद की दावत और शिर्क से बचाना। सूरत माईदा आयत 99 में आता है, मा अला रसूल इल्ल बलाग, रसूलों पर पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं, और जो जाहिर करो छुपाओ उसको पता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें रसूलों के नक्शे कदम पे चले। एक चुपता हुआ सवाल करूं खुद से भी, आज हमारे बच्चों के हीरोज कौन हैं? नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और बाकी सब, या कोई और? अगर आप सोने का पानी लेना और हीरों के कलम बना लें तो आप उससे रसूलों के नाम लिखे ना, तो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे बच्चों के हीरो उछलते कूदते और इंसानियत को गुमराह करते हुए लोग तो हैं, लेकिन लोगों की हिदायत के मुतमन्नी लोग आज हीरो नहीं रह गए। एक वीडियो किसी ने भेजी और कुछ यंग बच्चे ही हैं, तो वो राह जाते जाते रोक के लोगों से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, यानी पूछने वाले भी मुस्लिम है, कोई यूके का कोई ग्रुप था, यूथ ग्रुप, तो वो गुजरते हुए पूछ भी डिफरेंट लोगों को रहे और बहुत सारे जिनसे पूछे जा रहे हैं वो मुसलमानों से ही पूछ रहे हैं। और वल्लाही के जो उन्होंने राह जाते इंस्टेंटली मुसलमानों से सवाल किए, नबी सल्लम के बारे में कुछ सवाल थे, कुरान की सूरतों के बारे में कुछ सवाल थे, और इसी तरह से कुछ और पांच छह लोगों को 10% भी जवाब नहीं आते थे। बिल्कुल सिंपल सवाल, मक्की मदनी सूरतों के सवाल थे। तो ये तो आज हमारा हाल है। तो इन रसूलों को खिराजे तहसीन फिर हम कैसे देंगे, इसी आयतुल कुर्सी में आगे हमें पता चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें रसूलों से मोहब्बत दे दे। खुद नहीं हम वो काम करते, लेकिन उनके साथ मोहब्बत हमारे लिए उन कामों को आसान कर देगी। अब इस आयत में ये जो बात कह दी अल्लाह सुबहाना तला के हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी, तो इसमें क्या कोई तकाबुल है? असल में इन आयात में रद्द है, अगला हिस्सा जो आयत का शुरू करने लगे ना उससे आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहते मक्ततला, ना लड़ते, अल्लज़ीना वो लोग, मिन बादिहिम जो इनके बाद आए, यानी रसूल तो अपने हिस्से का काम करके चले गए मगर इनके बाद वालों ने रसूलों ही का नाम लेके लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ? यहूद कहते थे मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आला, नसारा कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम। देखा देखी किसी मुसलमान को जोश आ गया, उसने कहा नहीं मोहम्मद सल्लम ऐसे हैं, झगड़ा पड़ गया, मुखालफत, इख्तलाफ। ऐसे हुआ कि जैसे पता नहीं यहां मुकाबलेबाजी हो रही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ना चाहता तो ये बाद वाले उनका नाम लेकर ना झगड़ते, वला के इख्तलफ हो, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। फमिन हो मन आमना व मिन हो मन कफर, तो कोई इनमें से ईमान ले आया और कोई कुफर पर अड़ा रहा। व लौ शा अल्लाह मक्ततलु, दोबारा कहा और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह तो करता है जो वो चाहता है। असल में इसे एक आयत में अदब सिखाया गया। दो लफ्ज बोलती हूँ, लिखने की कोशिश कीजिए। एक है तफजील, ये जैसे फजलना का लफ्ज है ना, तफजील बैनल अंबिया, ये तो हकीकत है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को कम, किसी को पीछे कर दिया। लेकिन तफरीक बैनल अंबिया, फर्क करना, यहूद कहते हैं हम सिर्फ मूसा को मानते हैं, नसारा कहते हैं हम नहीं हम ईसा को भी मानते हैं, और मुसलमान कहते हैं कि हम तीनों को मानते हैं। तफरीक क्या कि एक को मानना एक को ना मानना, तो तफरीक बैनल अंबिया कुफर है। इधर अदब सिखाया गया दीनदारों को। असल में देखिए जो बात कल तक अंबिया कराम के साथ थी ना, अफसोस की बात है आज उम्मत मुस्लिमा ने वही रविश आयमा कराम के नाम के साथ जोड़ दी। कल लोग नबियों में से एक को आला एक को बाला, एक की बात ज्यादा अच्छी दूसरे की, उसका बयान उसकी राय ज्यादा अच्छी, ये वो करते थे। आज लोग अंबिया कराम को तो नहीं लेकिन आयमा कराम, चार इमाम जो उम्मत के मोहसिन थे, जो हिदायत के मीनारे थे, उनमें ये फर्क करने लग गए। इमाम अबू हनीफा को मानने वाले कहते हैं इमाम अबू हनीफा की राय सबसे अच्छी है। जाहिर है जब आप उनकी कबूल करते हैं तो बाकियों की रिजेक्ट करते हैं ना, सीधी सी बात है। चार में से तीन चीजें आप लेते हैं एक छोड़ते हैं तो आपने एक रिजेक्ट की ना, और इसी तरह दूसरे भी है। और बास दफा ये इख्तलाफ इस हद तक बढ़ने लगता है कि जिसके बाद इंसान सारी बातें खत्म कर देता है। तो असल में इस आयत में से मेरे आपके लिए जो अमल की बात है कि शख्सियत परस्ती में मत पड़ो। हमारे दीन में पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है। यहां मैं बहुत दर्द के साथ कहूंगी कि आज उम्मत मुस्लिमा में कुछ फिरके और मजाहिब तो खड़े ही सिर्फ शख्सियत परस्ती के नाम पे हैं। पीर साहब, शेख साहब, बुजुर्गाने बुजुर्गवाने फलां, लंबे लंबे नाम, उनका फैज, उनकी सोबत। यानी मैं अपने कानों से सुनी हुई बातें आपको बता सकती हूँ कि लोग आज के मुसलमान क्या कहते। मुझे मिसाल देनी अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये हकीकत है कि मैं आपको इस वक्त कुरान सिखा रही हूँ ना। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपको भी मौका दिया, ठीक है ना। आपको क्या करना चाहिए? जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो सीखें, और इस सारी बातों को सुन के अगर आपको अल्लाह का कलाम समझ आए तो अल्लाह का कुर्ब हो। मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें? शुक्रगुजारी रख लें या दुआ कर दें, यही बात है ना। आज कई लोग ऐसे हैं, मसलन आप देखें, मैंने आपको तर्जमा बता दिया, तफसीर अपने हिसाब से बता दी, कुछ वर्ड बता दिए। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप घर जाएं, मेहनत करें, लफ्जी तर्जमा याद करें, तफसीर पे गौर व फिक्र करें, आप खुद याद कर लें। सभी जाएंगे घर में याद करेंगे, आके टेस्ट दे देंगे, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। क्या आप में से किसी एक का अगर ये ख्याल हो जाए, जो कहने लगे ना अब ये है असल में उम्मत का बड़ा मसला, आप हमारे साथ बैठें, आपके सीने से कुछ ऐसी रोशनी और ऐसी खैर निकलेगी कि हमें लफ्जी तर्जमा खुद ही याद हो जाएगा। अगर मैं वहां की बजाय अगर इस कुर्सी पे बैठ के नोट्स लिखूंगी ना, मुझे ज्यादा समझ आएंगे। आपका फैज, यानी लफ्ज है ना फैज, मैंने इतना सर खपाया कुछ लोगों के साथ इस मौजू पे कि अल्लाह के बंदो यही बारीक सा फर्क बन जाता है शिर्क में। वो कहते हैं मसलन मैंने किसी से कहा कि फलां नमाज क्यों नहीं जमात के साथ पढ़ते, या फलां शख्स है उसके अंदर ये कमी क्यों है। वो कहते हैं नहीं अभी मैं अपने पीर से दूर हूं, मेरे पास सोहबत नहीं है। अच्छा, सोहबत नहीं है तो क्या होगा, मैं अब जाऊंगा फिर उनकी सोहबत में मुरीद बनूंगा, फिर उनका फैज मेरे अंदर आएगा तो मैं फटाफट पक्का नमाजी हो जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, ये सहाबा कराम ने क्या किया था? कहते नबी सल्लम की जात में से रोशनी निकलती थी, उसकी सहाबा की तो बात ही ना करो। यानी मेरे कानों ने ये बात सुनी लोगों से कि सहाबा की मिसालें ना दिया करें आप लोग, वो तो एक नबी का नूर निकलता था और उसकी फैज थी, तो अबू बकर बन गए, उधर नूर की रोशनी पड़ी अबू बकर उमर बन गए, उधर पड़ी उस्मान बन गए। मैंने कहा ये अबू जहल पे क्यों नहीं पड़ी, ये रोशनी थोड़ी सी अब्दुल्ला बिन उबई पे भी पड़ जाती। याद रखिए, नबी के लिए भी ये कहना शिर्क है, कहाँ आज के पीर और बुजुर्ग के लिए। माहौल ठीक नहीं तो मैं ठीक नहीं, नहीं ये अगर कोई सोचता है कि आप आते हैं तो तर्जमा याद हो जाता है, आप उठ के उधर जाएंगे तो भूल जाएगा, तो ये शिर्क है, ये नहीं करना। आज लोगों ने शख्सियत परस्ती के नाम पे दीन को वल्लाही शिर्क की माजगा बना दिया। और ये बहुत थोड़ा मैंने आपको बताया क्योंकि अभी आप बहुत बच्चे हैं, आगे जाके आप कुरान में कई रेफरेंसेस पढ़ेंगे। बाल जैसा बारीक फर्क है, आप कहते हैं ना जमीन आसमान का फर्क है शिर्क और इस्लाम में, बाल से ज्यादा बारीक फर्क है शिर्क और इस्लाम में। हदीस में आता है काली रात में स्याह पहाड़ पर काली चींटी जैसे नहीं नजर आती, इस तरह शिर्क नहीं नजर आता। नबी सल्लम को देखकर किसी ने एक दफा कह दिया कि जो अल्लाह चाहे और जो रसूल चाहे, तो आपने कहा अजलतनी लिल्लाही निद्दा, तो मुझे अल्लाह का शरीक बनाता है। तो बहरहाल बात का खुलासा यही है जो हो गया कि अल्लाह सुबहान तआला ने नबियों को, रसूलों को, नेक लोगों को, लोगों की हिदायत के लिए भेजा था और वो अपने अपने हिस्से का काम करके गए। आज वाले आज कर रहे हैं, ये भी चले जाएंगे कुछ साल में, फिर और आ जाएंगे। लेकिन बाद वाले लोग पैगाम को भूलकर उनकी शख्सियात में ऐसा खोए कि उन्होंने उसी बुनियाद पे मुख्तलिफ फिरके और मुख्तलिफ ग्रोह और मुख्तलिफ चीजें बना दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे आपके लिए बात है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मुझे दूसरे नबियों पर फजीलत ना दो। अच्छा, यहां बड़ी बात गौर से सुनने की, बहुत सारे मुसलमानों का ये सवाल होता है, तो क्या फिर हमारे अपने नबी सल्लम की हैसियत कम है या दूसरों की है या कैसे है? सवाल समझे, हर नबी अपने वक्त का बेहतरीन शख्स था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर है। बात वाज़े, तो हमें किसी से तकाबुल करना ही नहीं। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, अल्लाह कहता है कि फर्क है, मैं और आप नहीं कह सकते। मिसाल एक माँ है, उसके चार बच्चे हैं। अब हर बच्चे का एक मिजाज होता है, उसका एक अदब होता है, एक तरीका होता है, बाज बच्चों से माँ को ज्यादा प्यार होता है। माँ खुद अपने बच्चों को 10 बातें कह ले, तू नखट्टू, तुम बात नहीं मानते, देखो तुम्हारा भाई ऐसा है, देखो तुम ऐसा है, माँ खुद डांटती रहती है सारा दिन। और माँ को डांटता देखकर फूफी, खाला या कोई उसकी दोस्त भी उसके बच्चे को यही कहने लग जाए जो माँ कह रही थी थोड़ी देर पहले, तो माँ को गुस्सा लग जाएगा, तुम्हें क्या हक है मेरे बच्चे, मैं जो हूं ना उसको टोकरे, ये मतलब है। अल्लाह कहते हैं मैंने किसी से कलाम किया, किसी से कुछ और किया, ये किया वो किया, लेकिन आपको मुझे कहने का हक नहीं है। बात वैसे अय्यत ना हो का लफ्ज जो है कुव्वत देकर किसी की मदद करना, अय्यदा से है, और इक्ततला कतल होता है कतल करना, पर इक्ततला एहतमाम के साथ कतल करना, थोड़ा सा यानी इसमें शिद्दत का अंदाज पाया जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये जो इशू है कि मजहबी बहसें ना करो और झगड़े ना करो, इस पर हदीस सुन लीजिए, आपको ज्यादा शरह सदर हो जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, एक मुसलमान और यहूदी में झगड़ा हुआ क्योंकि यहूदी ने मुसलमान के सामने इस तरह कसम खाई कि इसकी कसम जिसने मूसा को दुनिया में मुंतखब किया, मुसलमान से जब्त ना हो सका, तो यहूदी के चांटा मारा और बोला क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, यानी अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को नबी सल्लम से भी ऊपर चुना है। यहूदी ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, आपने फरमाया कि मुझे मूसा पर फौकियत ना दो क्योंकि क्यामत के दिन तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर जब मुझे सबसे पहले होश आएगा और मैं मूसा को अर्श का पाया पकड़े हुए पाऊंगा, मालूम नहीं वो मुझसे पहले होश में आएंगे या तूर वाली, कोहे तूर पे जो अपनी जिंदगी में बेहोश हुए थे, तो तूर वाली बेहोशी के बदले में बेहोश होंगे ही नहीं। यहां से आपको नबी सल्लम की कसरे नफसी भी नजर आती है, आजजी भी है। इसी तरह एक और रिवायत भी बुखारी में ही है इब्ने अब्बास से, कहते हैं कि हजरत उमर को मिंबर पर ये कहते हुए सुना था कि मैंने नबी सल्लम से सुना कि आप फरमाते थे मुझे मर्तबे में ज्यादा ना बढ़ाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने उनके मर्तबे से बढ़ा दिया। क्या कहते हैं वो, सन ऑफ गॉड। फरमाया मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, मेरे बारे में यही कहा करो कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। फिर इसी तरह से आपको आता है कि इब्ने हब्बान की एक रिवायत में कि मेराज के मौके पे यानी सफरे मेराज में नबी सल्लम ने मुख्तलिफ रसूलों और नबियों को मुख्तलिफ आसमानों पे पाया था। क्यों कैसे? फरमाया कि जिस आसमान पे किसी को पाया वो उसका मुख्तलिफ दर्जा था। आपका था सातवां आसमान जो अल्लाह ताला के अर्श के पास है, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम को पाया था। तो ये दर्जे हैं, रहते हैं, ये दुनिया की रियलिटी है। देखिए आप आम ले लें, आमों की किस्में मुख्तलिफ है, अनवर अटोल एक और आम है, दुसहरी कोई और है, चौसा कोई और है, एप्पल ले लीजिए, रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं, स्वीट भी हैं, येलो भी है, सब है कुछ है। तो ये वैरायटीज दुनिया का एक हुसन है, इस पे बहस नहीं करनी चाहिए। यहाँ बाज लोग अपने उस्तादों को बहुत टैली करने लगते हैं, बाज अपने स्कूलों को, अपने इंस्टीट्यूट्स को, हमारे इंस्टीट्यूट में ये होता है, हमारी मस्जिद में ये होता है, हमारी टीचर ये बताती, वो तो ऐसे, और बाज लोगों के नसीब में सिर्फ कंपेयर करना होता है, जहां आते हैं ना उसको दूसरे से कंपेयर करके चलते रहते हैं। हिदायत लेने वाला कभी कंपैरिजन नहीं करता। ये मैं आपको एक नसीहत कर दूं, कल आप भी जाके बहस करने लग जाएं किसी से, हिदायत की नीयत से अगर आप इस वक्त भी सुन रहे हैं ना, तो आप मेरे बारे में तो जानेंगे भी नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से पढ़ के आई और मेरा क्या मिशन है। आप ये देखेंगे कि मेरी इस बात से आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं, दैट्स इट। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आई हूं, और अगर इस वक्त आपको भटकाने का जरिया बन रही है तो मेरे नाम के साथ चार डॉक्टर की डिग्रियां भी लगा दें तो वो मेरे और आपके काम नहीं आएंगी। इसलिए बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस तरह के मामलों में ना पढ़ें।
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد